ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ।
ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਪੁਨਃ ਸਮਾਧਾਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੇ ਸੇਠ ਥੇ, ਉਨ੍ਹੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਆਂਖੋਂ ਮੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹੀ ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਸੇਠ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨੋਂ ਤੱਕ ਹਰਾ ਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਯਦੀ ਆਪ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਭ ਹਰਾ ਹਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੋ ਆਪਕੀ ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਜੋ ਯੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੋ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਬ ਸੇਠ ਜੀ ਕੋ ਤੋ ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਥੀ, ਅਬ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਕੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਸੇ ਪੁਤਵਾ ਡਾਲਾ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਥੀ ਆਸ ਪਾਸ ਕੀ ਸਭ ਮੇ ਹਰਾ ਰੰਗ। ਅਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਤੇ ਥੇ ਕਹੀਂ ਤੋ ਵਹਾਂ ਤੋ ਹਰਾ ਰੰਗ ਥਾ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਭਲੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੋ ਹਰਾ ਹਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਖੂਬ ਪੁਤਾਈ ਉਤਾਈ ਹੋਈ, ਖੂਬ ਖਰਚ ਵਰਚ ਕੀਆ ਉਨ੍ਹੋਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਚੀਜ਼ੇ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ, ਵੋ ਚੀਜ਼ੇ ਦਿਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰਤੀ ਥੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਹਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹਾ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਗਰ ਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਯਦੀ ਪੇੜ ਪੌਦੋ ਕੀ ਹੋ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਕੀ ਤੋ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਹਰੀ ਹਰੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਯਹਾਂ ਕੇ ਸੇਠ ਜੀ ਕੋ ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਥੀ, ਉਸਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਜੈਸਟ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰੋ। ਅਬ ਵੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੋ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਠ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਹਰਾ ਕਰਨੇ ਮੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪ ਐਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਹਿਨ ਲੋ, ਜਬ ਆਪ ਹਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਹਿਨੋਗੇ ਤੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਕੋ ਹਰੀ ਹਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਉਸਸੇ ਆਪਕੀ ਆਂਖੋਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਠ ਜੀ ਕੋ ਲਗਾ ਕਿ ਅਰੇ ਕਿਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਗਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਯੇ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਇੱਕ ਹਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਵੋ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨੇ ਮੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨੇ ਮੇ, ਸਮਾਜ ਕੋ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨੇ ਮੇ, ਸੰਸਾਰ ਬਦਲੇ ਐਸਾ ਸੋਚਨੇ ਮੇ, ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਮੇ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਯੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਆਂਖ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਯਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਸ਼ਮਾ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੋ ਐਸਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕੀ ਜੋ ਅੱਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਤੀ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹਮੇ ਸਰਲ ਹੀ ਔਰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਨੇ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਚਲੀ ਇਸੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿ ਹਮ ਵੀ ਅਬ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਹਿਨੇਂਗੇ, ਅੱਛਾਈਓ ਕੋ ਦੇਖਨੇ ਵਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਪਹਿਨੇਂਗੇ। ਇਸੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਆਜ ਕੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਦਰਣੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਯੇ ਚਸ਼ਮਾ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਔਰ ਸਰਲ ਹੈ।
ਯੇ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਨੇ ਕਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਈਓ ਨੇ ਬਨਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਨਤੇ ਹੈ ਐਸੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮੇ, ਉਸਸੇ ਮਨੁ ਸਵਯਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸਕੋ ਬਹੁਤ ਭਯਾਵਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਤੋ ਯਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਦਲੇਂਗੇ ਵਹੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਂਗੇ, ਜੋ ਦੂਸਰੋ ਕੋ ਬਦਲਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਯੇ ਬਦਲ ਜਾਏ ਵੋ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਵੋ ਬਦਲੇਂਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੇ ਹੀ ਹਮ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਗਹਿਰਾ ਇਫੈਕਟ ਹਮਾਰੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਪਰ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਯੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਹਮ ਦੂਸਰੋ ਮੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਦੁਰਗੁਣ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਆਂਖੇ ਕੈਸੀ, ਇਸਕਾ ਮਸਤਕ ਕੈਸਾ, ਯੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਯੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਇਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ੋ ਕਾ ਅਸਰ ਹਮ ਪੇ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਣ ਦੇਖਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਦੀ ਅਵਗੁਣੋ ਪਰ ਹਮਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕਾ ਕੁਛ ਸੂਕਸ਼ਮ ਅੰਸ਼ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲੇਤੇ ਹੈ ਹਮ ਉਸਕੋ ਸੰਵਾਰ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਗ੍ਰਾਹੀ ਬਨਣਾ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇ ਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇਖਤਾ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਅਵਗੁਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਿਖਤਾ, ਯੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਮੁਝੇ ਚਿੜਾਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਯੇ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਦੇਖਤਾ ਰਹਤਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧੋ ਮੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣਾ, ਯੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾ ਕਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਲੜਾਈ ਹੋਣੇ ਲਗਤੀ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੀ, ਤਬ ਤੋ ਉਨ੍ਹੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਐਸੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਣਾ ਬੈਂਗਣ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਮੇ ਹੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਯਦੀ ਹਮ ਦੂਸਰੋ ਕਾ ਗੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਵਰਣਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਕਭੀ ਨਾ ਕਭੀ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਵੋ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਓ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖ ਕਰਕੇ कम से कम एक जो गुण उसके अंदर है वो उसे ही देखा जाए और दूसरों से बखान किया जाए। और होता यह है आजकल कि हम अच्छाइयां ना देख के बुराइयों को देखते भी हैं और बखान ज्यादा करते हैं, इसलिए वही चीज हमारे पास भी रिटर्न हो गया
और संबंध भी बहुत विषैले हो जाते हैं।
जी जी।
तो ये सिद्धांत सभी याद रखेंगे कि जो हम दूसरों में देखेंगे वैसा ही दूसरे हम में भी देखेंगे। हमारी दृष्टि गुणग्राही है तो दूसरों की दृष्टि भी हमारी तरफ गुणग्राही रहेगी, और हम सदा ही बुराई देखते हैं तो वो भी हमें बुराई देखेंगे। ये सूक्ष्म मनोविज्ञान है।
जी जी। मतलब आज के एपिसोड से हम एक सुंदर गुणग्राही चश्मा क्यों ना सभी को सौगात में भेंट करें।
बिल्कुल, हमारे यहाँ बनता है तो सभी उसे मुफ्त में खरीद सकते हैं।
जी जी, इससे जीवन उनका बड़ा सुखदायी हो जाएगा। प्रदा जी, चलिए मेल हमारे पास वैसे ही आए हैं, एक मेल मैं वहाँ पहुँचा हूँ जहाँ आंखों की ही बात है। ये नितेश हैं प्रदा जी, ये कहते हैं ओम शांति, मेरी दोनों आंखों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और बचपन से ही मेरी आईज खराब है, -12 और -14 नंबर है दोनों में, तो कॉन्टेक्ट लेंस यूज करता हूँ, क्या इसमें कुछ सुधार की संभावना है, मैं क्या कुछ मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकता हूँ, कृपया मुझे कुछ सजेस्ट करें।
हाँ, देखिए, आंखें नहीं तो जहान नहीं।
जी जी।
और एक निरंतर कष्ट भी रह सकता है, कभी आंखें दर्द भी करने लगेंगी, कभी खुजली भी होने लगेगी।
जी, जी।
पहले तो मैं एक स्थूल सी चीज बताऊं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर विशेष रूप से, जो भारत की एक प्राचीन पद्धति है, इससे भी आंखों में काफी फायदा होता है, मैंने भी किया है, भले क्योंकि इनकी आंखें काफी कमजोर हैं, इन्हें 6 मास करना पड़े तो भी अच्छा है। सवेरे जैसे ही आंख खुले, मुंह धोए बिना जो लार होती है ना, उसको बासी लार कहते हैं, वो उंगली से भरे और आंख में सूरमे की तरह लगा लें,
मतलब काजल की तरह। हाँ,
और फिर दूसरी उंगली से इसमें भरे और दूसरी आंख में लगा लें। इनकी आंखें बहुत जलेंगी और 10 मिनट तो खुलेंगी भी नहीं, ये परेशान ना हो, लाल भी हो सकती हैं।
अच्छा।
लेकिन ये 15 मिनट आंखें बंद करके बैठे रहें तो वो जो लार है ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। हम भी जानते हैं बचपन में कहीं कट जाता था ना, माताएं ये लगवा, थूक लगाओ ये बासी, तो वो भरने लगता था, तो बहुत ही अच्छी चीज है ये। कहीं फुंसी फोड़े हो जाएं, दाग वाग हो जाएं, उनको मनुष्य को लगा लेना चाहिए, लेकिन सवेरे बिना मुंह धोए उठते ही ये काम करना होता है। एक तो ये, दूसरा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन चीजों की हम करें, और उसमें अगर इन्होंने योग सीखा हो तो आधा घंटा रोज तो ये स्वयं को योगदान दें अपनी आंखों के लिए खास, और एक विजन बनाएं। एक बहुत अच्छी चीज होती है आधा घंटा योग, तो एक टाइम फिक्स करके सवेरे, ऐसे हम 6 मास तक इन्हें करना है क्योंकि इनकी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बड़ी है। विजन एक बनाए कि मैं बिना चश्मे सब कुछ पढ़ रहा हूं, दूर दूर तक का देख रहा हूं। ये विजन भी इसमें आधा मिनट ही लगता है, ये विजन सोने से पहले और उठते ही ये बना सकते हैं, तो इस विजन का इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा। और तीसरी चीज है ब्रेन को और आंखों को एनर्जी देना। ब्रेन को एनर्जी देने की विधि हमारे दर्शक फिर से सभी सुन लें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। एक अच्छे व्यक्ति को भी 5 मिनट रोज अपने ब्रेन को एनर्जी देनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन थकता है आजकल, थोड़ी बहुत उसमें टेंशन जैसी, स्ट्रेन जैसा होता ही रहता है, हर मनुष्य थकान फील करता है। तो दोनों हथेलियों को मलते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ 3 बार याद करें, और फिर 1 मिनट के लिए अपने दोनों हाथ रख दें ऊपर, आंखें बंद कर लें बिल्कुल पीसफुली, जैसे हाथों से वेरी प्योर एंड गुड एनर्जी इज गोइंग टू ब्रेन। 1 मिनट ऐसा 10 बार ये करेंगे। दूसरा, इन्हें आंखों को एनर्जी देनी है, इसके लिए दूसरा संकल्प करेंगे हाथ मलते हुए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ 3 बार, और फिर थोड़ा सा मोड़ के हाथों को ऐसे रख लेंगे और फील करेंगे कि हाथों से ये प्योर एनर्जी आंखों को जा रही है, तो इससे जो नर्व्स हैं ब्रेन को और आंखों को जोड़ रहे हैं वो स्ट्रांग होंगी और इनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। 6 मास तक ये बहुत ही केयरफुल्ली रेगुलरली ये अभ्यास करें।
बिल्कुल पता जी, और जैसे हम लोगों ने उस कहानी से शुरुआत की थी उसमें भी शायद आंख की ही बात थी, कई डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि हरा हरा देखो, हरा हरा खाओ, तो इसका प्रभाव आंखों पे बहुत अच्छा पड़ेगा, ये बात भी क्या?
बिल्कुल, देखिए ये ऐसी सूक्ष्म फिलोसफी है, किसी को भी संपूर्ण रूप से ये ज्ञात नहीं कि ब्रेन में क्या क्या है, तो इन चीजों का इफेक्ट पड़ता अवश्य है, बहुत अच्छा पड़ता है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, चर्चा हो रही थी हमारी कहीं ब्रेन पर, तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में वीक था, उसको एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने एक सजेशन दिया कि तुम म्यूजिक सुना करो और उसको एंजॉय किया करो, क्योंकि म्यूजिक और मैथमेटिक्स दोनों का एक ही केंद्र है ब्रेन में, दोनों एक ही जगह स्थित हैं, तो म्यूजिक सुनने से वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसका इफेक्ट आएगा मैथमेटिक्स पर, तुम उसमें होशियार हो जाओगे।
ऐसा हो गया?
नहीं, अभी तो उन्होंने शुरू किया।
अच्छा,
होगा तो मतलब मैं ये कह रहा था कि ब्रेन की गति इतनी सूक्ष्म है, कहाँ क्या चीज कार्य कर रही है ये सब तो जान नहीं सकते, पर इससे ब्रेन अगर एफिशिएंट कर लिया जाए तो सब चीजें ठीक हो जाती
है। ऐसी कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी होती है आंखों से जुड़ी हुई, जिस किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, कुछ कलर्स दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे हैं, किसी को रात होने लगी अंधेरा हुआ कुछ दिखना बंद हो जाता है, तो क्या कौन सी पैथी वैसे आपके पास सबसे अच्छी हो सकती है?
स्पिरिचुअलिटी ये सब तो करना ही है, लेकिन ये जो ऐसी प्रॉब्लम है जो पूर्व से चली आ रही, दादा को भी था, फिर बाप को भी था, फिर इनको भी है, तो इसमें होम्योपैथी इनको ज्यादा अच्छा काम करती है। बाकी आई ड्रॉप्स भी बहुत अच्छी आजकल आयुर्वेद वालों ने निकाली है, वो भी काफी मदद करती है। जिस पैथी से भी लाभ हो वो कर लेना चाहिए। मैं इस विचार का हूँ कि हर पैथी अपने में परफेक्ट नहीं है, कोई किसी फील्ड में परफेक्ट है, कोई किसी फील्ड में परफेक्ट है। वेलोपैथी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, लोग उसकी ग्लानी भी करते रहते हैं, लेकिन काम भी तो बहुत अच्छे किए, सर्जरी से कितना बिगड़ा हुआ केस भी ठीक हो जाता है। कई दवाइयां हैं, मनुष्य बिल्कुल चिल्ला रहा हो उसको शांत कर देते हैं इंजेक्शन लगा के। तो हर पैथी का अपना महत्व है, हमें सभी पैथीज को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सभी विद्वानों ने, आचार्यों ने उनकी इन्वेंशन की है और सभी पर बहुत अच्छे अच्छे शोध हुए हैं। कुछ चीजों में आयुर्वेद बहुत कारगर है, कुछ चीजों में होम्योपैथी, कुछ चीजों में नेचर क्योर, और ये कलर थेरेपी और अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो बहुत सारे प्रयोग, कुछ बड़ी बड़ी चीज हमने देखी एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाती है। अभी हम एक जगह गए थे, हमारी एक बहन को डॉक्टरों ने कह दिया था, उसको लंबर पेन था कमर में नीचे पेन, कभी ऑपरेशन ही होगा, और एक दो ने कह दिया बिल्कुल ठीक नहीं होगी। एक व्यक्ति जो सिंपल सा है, जो कप लगाकर वो थेरेपी देता है, उसने 15 दिन में उस बहन को ठीक कर दिया बिना मेडिसिन, खर्च भी बहुत थोड़ा सा, मुझे वहां ले गए थे पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो देखिए, ऐसी चीज है, एक साधारण सी थेरेपी भी किसी बड़े रोग को ठीक कर सकती है। एक एलोपैथी बहुत बड़ी साइंस भी किसी छोटे रोग को कभी ठीक नहीं कर पाती, अपने भाग्य की भी बात है, अपने पुण्य कर्मों की भी बात है, उचित समय की भी बात है, इसलिए जिस पैथी से फायदा हो उसे ले लेना चाहिए।
अब इतनी सारी पैथियां बैठा जी, आपने कहा कि चलो एक समय आता है या भाग्य साथ देता है तो तुरंत हमें वो फायदा मिल जाता है, लेकिन अब इतनी पैथियां है तो व्यक्ति घूमते घूमते कि इसमें थोड़ा देख लूं, वहां नहीं हुआ वहां जाऊं, बड़ा लंबा समय चला जाता है और व्यक्ति बड़ा निराश हो जाता है।
देखिए, सबसे पहले तो मनुष्य अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएगा, चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे वो एलोपैथी है। गरीब व्यक्ति है तो वो सोचेगा भाई कम खर्च जहां होता हो होम्योपैथी के पास जाएगा या नेचर क्योर वालों के पास जाएगा, ये तो सब करना ही पड़ता है, क्योंकि जब मनुष्य बीमार होता है और किसी का प्रियजन बीमार हो तो व्यक्ति चाहता है भाई कहीं भी जाना पड़े अब इसको ठीक कराना चाहिए।
जी 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 जी, ठीक है भैया जी, हमारी भी एक कामना रहेगी कि नितेश जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं, इनकी जो आंखें हैं दर्द होती हैं तकलीफ होती हैं वो दूर हो जाएं। भैया जी, हमारे पास एक आया है, अमन ने हमें हरियाणा से भेजा है पत्र, ये पत्र मैं रखना चाहूंगा आपके सामने। ये कहते हैं कि ओम शांति सूर्य भाई जी, मेरा नाम अमनदीप है और मैं पिछले 3 साल से ज्ञान में चल रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं जज बनूं और मैं फिलहाल बीए कर रहा हूं, इसके बाद एलएलबी करके जज के लिए अप्लाई करूंगा। मैंने सुना है कि अचेतन मन से हम सभी तरह के काम कर सकते हैं, क्या अचेतन मन से मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूं? अगर हां तो कैसे? मैं शुरुआत कहां से और कैसे करूं ताकि मुझे पढ़ाई में भी रुकावट ना हो और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चलूं, कृपया मार्गदर्शन करें। ये अमनदीप है बेहतर।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सभी लोगों के लिए है, युवकों के लिए है जो कुछ बनना चाहते हैं। एक तो अपना लक्ष्य बहुत क्लियर, जिसको विजन कहते हैं, बहुत क्लियर होनी चाहिए और एक ही हो तो बहुत अच्छा होगा। ये नहीं आज मजिस्ट्रेट जज बनने की इच्छा है तो कल सोचे मैं तो प्रोफेसर बनूं, फिर सोचे नहीं मुझे तो ये काम कर लेना चाहिए, फलाने लोगों का ज्यादा मान है, वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। एक लक्ष्य पहली तो चीज, जो इनको जज बनना है तो बस ये विजन भी वही बनाए, सोचते ही कि मैं जज की कुर्सी पर बैठा हूँ, वही ड्रेस पहनी हुई है, दोनों ओर दो वकील खड़े हैं और लोग खड़े हैं और मैं सुन रहा हूँ सबकी बात और मैं जज हूँ अब। एक ये प्रैक्टिस, विजन, विजन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी अब ये अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छा ध्यान दें, क्योंकि LLB करने के बाद इनको फिर एग्जाम देना होता है, कंपटीशन होता है, उसमें जो उस फील्ड के होशियार स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो अपनी ये टैलेंट्स को बढ़ाते चलें, उसमें विशेष रूप से निर्णय शक्ति। देखिए, एक अच्छे जज के लिए परफेक्ट निर्णय शक्ति का होना परम आवश्यक है। साथ में वो अपनी इनर विजडम को बहुत बढ़ाता चले। झूठे केस भी बहुत आते हैं आजकल, वकील भी और सब गवाह भी ऐसे झूठे मिले रहते हैं कि वह सच को झूठ, झूठ को सच बनाने में देर नहीं करते। इसलिए इनकी अपनी विवेक शक्ति भी बहुत सुंदर हो, इसलिए अभी से इन्हें आधा घंटा सवेरे आधा घंटा शाम राजयोग मेडिटेशन करना चाहिए, और सवेरे उठते ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास डिवाइन विजडम है, मेरी निर्णय शक्ति परफेक्ट है। ये चार चीजें अभी से ये रोज अच्छी तरह सवेरे उठ के करें, पांच पांच बार करें और एंजॉय करें उस टाइम को। और ये भी इनके मन में खुशी और ईश्वरीय नशा और एक परम आनंद होना चाहिए कि मुझे जज बनना है और ठीक फैसले देने हैं, मुझे अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाना है और मैं ऐसे अच्छे अच्छे काम करूंगा। तो अभी से जैसे ये एक सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, वो इनके कमांड्स को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर उसकी मदद इसको उस फील्ड में सफल कराएगा।
कब ये फिक्स हो जाना चाहिए कि हाँ भाई अब यही फील्ड, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है अपने संगी साथियों को देख करके, अपॉर्चुनिटीज को देख के, कोई नया और फील्ड आ गया सामने, कुछ और एडवर्टाइजमेंट देख करके, तो व्यक्ति कई बार कंफ्यूज, खास करके यंगस्टर्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बनूं, ये बनूं, ये बनूं। कब कर लेना चाहिए और कैसे फिर उसमें आगे बढ़ना?
ये सत्य है, इसलिए हमारे, मैं तो कहता हूँ एजुकेशन में ही ऐसा कुछ एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि भिन्न भिन्न फील्ड की अच्छी जानकारी सब बच्चों को मिल जाए, ऐसा कहीं है नहीं। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आगे कौन कौन से फील्ड उनके लिए हैं वो पता नहीं है। अभी माँ बाप डॉक्टर हैं, बच्चा सोचता है मैं भी डॉक्टर बनूंगा, वो भी चाहते हैं डॉक्टर बने। माँ बाप वकील हैं तो वो भी चाहते हैं मेरा बच्चा वकील बन जाए। ये ऐसे ऐसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। टीचर सोचता है मेरे बच्चे टीचर बन जाए, और किसी टीचर को अच्छी विजन है तो वो और भी सोचता है मेरा बच्चा इंजीनियर बने, ये करे। तो लेकिन इसकी अगर हमारी एजुकेशन में एक सुंदर प्रावधान हो जाए 10वीं क्लास में ही, भाई ये फील्ड है, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है, तो बहुत ही अच्छा रहे, हर स्टूडेंट को बहुत अच्छी नॉलेज रहे। लेकिन 12वीं में प्रवेश करते ही उन्हें इस चीज की अच्छी जानकारी अवश्य हो जानी चाहिए कि हमें आगे ग्रेजुएशन करना है, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, कॉमर्स है तो हमें CA का एग्जाम देना है या हमें MBA करना है, किस फील्ड में हमें जाना है। ये 12वीं क्लास में यदि क्लियर हो जाता है और वही मनुष्य चाहे अपने फ्रेंड्स की या अपने माँ बाप की मदद से या जो उसके शुभचिंतक हो, अपना एक फील्ड निश्चित कर ले, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे गांव से आने वाले बच्चे, उन्हें बेचारों कुछ पता नहीं होता कौन कौन से फील्ड उनके सामने है, जो शहरों में है
उनके लिए है कि बस पढ़ना है।
जो अच्छे परिवारों से हैं वो तो जानते हैं, अन्यथा ये सोचते हैं बच्चे पढ़ना है, नौकरी तो मिलती नहीं, चलो मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो 12वीं क्लास में ये विजन क्लियर हो जाने चाहिए।
बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, अगले मेल की ओर मैं लिए चलता हूँ। ये हमारे पास भूमिका जी ने भेजा है भ्राता जी, USA से, और ये कहती है कि ओम शांति सूरज भाई जी, फर्स्ट आई वुड लाइक टू मेंशन दैट योर प्रोग्राम इज रियली गुड एंड वेरी हेल्पफुल। आगे इन्होंने अपना क्वेश्चन लिखा है कि आई एम इन ज्ञान सिंस 2009 एंड सिंस लास्ट 2 ईयर्स प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन रेगुलरली एंड ऑल्सो लिसनिंग टू मुरलीज। आई हैड रियली गुड एक्सपीरियंस व्हेन देयर वॉज वन इनिशिएटिव फॉर सर्विस टू द वर्ल्ड। I have confusion on morning meditation. First, I talk to Baba for little bit and then I start meditating for lots of things going in my routine life, like my daughter's education, my dad's diabetes, my sister's marriage, etc. I try to meditate for about an hour every day, but for some reason, I'm not seeing the results. प्लीज हेल्प।
मनुष्य गलती ये कर रहा है कि पापा की डायबिटीज की भी चिंता इसको ही है
जी।
तो बहन या भाई की शादी की चिंता भी इसको ही है,
अपनी
बेटी की एजुकेशन की चिंता, तो सारा बोझ इसने अपने ऊपर ले लिया है। इस बोझ की जरूरत नहीं है, इनको थोड़ा सा अपने को एकाग्र करके ज्ञान योग में परफेक्ट होने की जरूरत है। देखिए, ये सब तो शाखाएं हैं ना इस वृक्ष की, हम तने को मजबूत कर दें तो बीज से कनेक्शन जोड़ें, सर्वशक्तिवान से योग लगाएं, उसकी शक्तियां इन्हें मिलने लगेगी और वो शक्तियां सब फील्ड में आपे ही काम करेगी। बाकी रही बात डायबिटीज की, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, पापा उसके लिए आप ही सब कुछ करेंगे, उनको भी उसकी चिंता है, वो बढ़े नहीं, मीठा न खाएं। अब वो मीठा खाते रहे और ये उनकी चिंता करती रहे,
योग करती रहे
तो इससे तो कुछ बनेगा ही नहीं। रही बात बच्ची की एजुकेशन की, उस पर ध्यान देना है, नो प्रॉब्लम, उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सवेरे उठते केवल इतना पर्याप्त नहीं है कि बाबा से बातें की और फिर ये चिंतन शुरू कर दिया। ये चिंतन ही गलत है, इस चिंतन को इनको पूरी तरह समर्पित करना होगा। और सवेरे 4 से 5 के समय को बस ये ऐसा समझ लें कि मुझे अपने में स्पिरिचुअल एनर्जी भरनी है, मुझे गॉडली ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है, मुझे उसके इंट्यूशंस लेने हैं, ये चिंता करें सवेरे। क्योंकि सवेरे की ये बहुत बड़ी खुराक इसको इन सब फील्ड में मदद करेगी। बाकी हर फील्ड के लिए स्वयं चिंतित होना ये जरूरत नहीं है, बल्कि चिंता करने से अच्छा होता है इन सबको गुड वाइब्रेशंस दें। 4 से 4:45 तक योग कर लें और 4:45 से 5 इनकी चिंता न करके एक एक को अच्छे वाइब्रेशंस दे दे 5-5 मिनट, तो ये इनकी बहुत बड़ी मदद होगी। आजकल मनुष्य बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि वो दूसरे को मदद तो नहीं करता, चिंता करता है। चिंता से निगेटिव एनर्जी उन लोगों की तरफ जाती है और उनकी वो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। अब ये भी सोचती होगी पापा को डायबिटीज है, बहुत ज्यादा हो गई तो ये तो मर जाएंगे जल्दी, फिर हमारे परिवार का क्या होगा। बिना मतलब का सोच इनको परेशान करता है। नो, ये शांत में बैठे, डायबिटीज है आज करोड़ों लोगों को है, मैं पापा को गुड वाइब्रेशंस देती हूँ ताकि उनकी डायबिटीज बढ़े नहीं, अंडर कंट्रोल रहे, और उन्हें भी कहूंगी कि पापा जरा मीठे का ध्यान रखना, तो बस इससे ठीक होगा।
बिल्कुल, मतलब शायद ये यहाँ पे एक गलती हो रही है कि हम सीधा उठते ही शायद परमात्मा से ओम शांति करने के बाद हम ये सारी प्रॉब्लम उनके सामने रखने लगते हैं कि प्रभु ये प्रॉब्लम है, ये करने की जरूरत नहीं,
इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं। हम ऐसा अभ्यास करेंगे कि ऊपर शिव बाबा है उसको विजुअलाइज करें, नीचे मैं आत्मा हूँ ये भी विजुअलाइज करें, और उसकी एनर्जी एक फाउंटेन के रूप में मेरे ऊपर आ रही है, कोशिश करें अधिक से अधिक ये करने की, फिर उनसे मीठी मीठी बातें करें। वो हमारा गुड फ्रेंड है, वो हमारा परम पिता है, वो केवल समस्याओं को न रखे उनके सामने, तुम कितने अच्छे हो, हमने तुम्हें कितना समय से याद किया था, तुम जरूर भक्ति में हमारी बात सुनते होगे, हमने भी महसूस किया था कि तुम हमारी सुनते हो, अब तुम हमारे पास आ गए हो, अब तो तुम हमारे हो गए, हमारा और तुम्हारा साथ वाह कितना सुंदर है, हाँ ये साथ सदा ही चलता रहे, चारों युग में चले, हम और तुम साथ साथ हो, एंजॉयमेंट से भरें अपने मन को इस तरह उससे बातें करके। फिर भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास योग के जो हम सिखाए हैं और हमारे सेवा केंद्रों पर भी सिखाया जाता है वो सब करें। कभी 5 स्वरूपों के अभ्यास करें, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करें, श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करें, तो अपने उस समय को बहुत सुंदर व्यतीत करें। और देखेंगे अगर 4 से 5 का समय किसी का सुंदर व्यतीत होने लगे रोज जी, तो अनुभव ऐसा है बहुतों का कि ये समस्याएं रहती ही नहीं।
बिल्कुल, मतलब एक बात जो आप हमेशा कहते हैं भ्राता जी, मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अपनी मन की स्थिति को श्रेष्ठ बना लें तो सारी स्थितियां सहज और सरल हो जाती है। और शायद हम लोग समस्याओं के बारे में सोच सोच के शायद बहुत ज्यादा इतने परेशान हो जाते हैं कि मन की स्थिति तो खत्म ही हो जाती है और परिस्थितियां जो की त्यों बनी रहती हैं या बढ़ती चली जाती
है। बस ये लास्ट बात इस एपिसोड की मैं कहना चाहूंगा फिर से सभी को, स्व स्थिति को श्रेष्ठ बना लें तो परिस्थिति स्वतः ही बदल जाएंगी, और स्व स्थिति श्रेष्ठ बनेगी योग अभ्यास से और अच्छे स्वमान के अभ्यास करने से और अपनी धारणाओं पे भी ध्यान देने से, पॉजिटिव होने से। लेकिन मनुष्य ये कर रहा है इन सब बातों का चिंतन करते हुए परिस्थिति का चिंतन करके स्थिति बिगाड़ लेता है, रिवर्स कर देता है, इसलिए जीवन में अनेक परिस्थितियां उसको आ घेरती हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि परिस्थितियों पे ध्यान न दें, उनसे कनेक्ट ही न करें, थोड़े समय के लिए उसे डिटैच हो जाएं, जैसे रात हो गई
जी,
अंधेरा हो गया, ना घर में रहते हैं अपने जला लेते हैं सब लाइट्स, बाहर भी होते हैं तो लाइट्स रहती हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं, हम अंधेरे से डिटैच है ना तब, क्योंकि हमें पता है अंधेरा रोज होता है और ये है। इसी तरह कुछ बातों से हम अपने को डिटैच रख के श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करें तो सब कुछ सुंदर हो जाएगा।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी, मुझे लगता है सार तो यही है जीवन का कि सचमुच अपनी स्थिति को जितनी अच्छी बनाए, श्रेष्ठ बनाए, सारी परिस्थितियां वैसे ही खत्म हो जाती हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए व्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों सचमुच स्थिति की बात, मन की स्थिति की बात आ रही है और जहां से हमने शुरुआत की थी ना वही वाली बात आ जाती है कि आप कैसा चश्मा पहनते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा नजरिया रखते हैं। वो कहते हैं ना सोच को बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा, नजर को बदलो तो सारे नजारे बदल जाएंगे। और ये सचमुच बिल्कुल फैक्ट है कि हम आप देखेंगे जैसे हम पहले भी सुनते आए हैं कि यदि तालाब में कीचड़ में कोई कीचड़ को देखता है और कोई कमल को देखता है, दो लोग हैं और दोनों अलग अलग चीजें देख रहे हैं, कोई कहता है कितना गंदा कीचड़ है और कोई उसी में उस सुंदर कमल को देखता है कि कितना सुंदर कमल है। ठीक वैसे ही चांद में कोई दाग देखता है और कोई ये देखता है कि वाह चांद तो कितना सुंदर है। तो यही वाली बात है कि हम अपने अंदर जैसे होते हैं ना वही चीज हमें बाहर भी दिखाई देती है। इसीलिए चश्मे वाली जो बात थी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लिए भी अच्छाई का चश्मा, दूसरों के लिए भी अच्छाई का चश्मा, परिस्थितियों के लिए भी अच्छाई का चश्मा हम यदि धारण कर लेते हैं तो सचमुच क्योंकि हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, क्योंकि हमारी मन की स्थिति बहुत सुंदर रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, ये अच्छे वाइब्रेशंस उस सिचुएशंस को भी खत्म कर देंगे, बदल देंगे और हमारा जीवन पूरी तरह से खुशहाल हो जाएगा। समाधान का लक्ष्य यही है, आपका जीवन खुशहाली से भरा हो, किसी प्रकार की आपको तकलीफ ना हो और यदि तकलीफें आती भी हैं तो बहुत सहज और सरल हो जाएं और आप जीवन का संपूर्ण आनंद लें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत कि आपका जीवन बहुत बहुत खुशहाल हो, आनंद से परिपूर्ण हो। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान।